بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری 2023 جاری ہے. کیا مردم شماری بھی اس وقت 1998 کی طرح اعتراضات کے زد میں ہے؟ کیا مختلف قومی تحفظات کا اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں؟ یقیناً مردم شماری میں کراچی کی اصل آبادی کو ظاہر کیا جائے گا یا حسب معمول ویسا ہی ہوگا جیسے 2017 میں یا 2017 سے پہلے 2001 میں یا اس سے پہلے 98 میں یا اس سے بھی پہلے 2 میں یا اس سے پہلے 72 میں 1972 میں یا اس سے بھی پہلے 1951 اور 1962 ایوب خان کے دور میں یا اس سے بھی پہلے 1951 میں جیسا ہوا. اصل میں اعتراضات ہوتے کیوں ہیں؟ خصوصاً میری ہمیشہ ان لوگوں سے سوال ہم کرتے ہیں کہ جو اقتدار میں ہے وہ اعتراض اگر کریں تو بات سمجھ میں نہیں آتی, اور جو آج اپوزیشن پارٹی ہے کل وہ بھی اقتدار میں تھے, جیسے پرویز مشرف کے دور میں بھی مردم شماری کی گئی, اعتراضات اس وقت بھی تھے. آج ڈیجیٹل مردم شماری, معاشی مردم شماری, مکانی مردم شماری, انسانی مردم شماری جاری ہے, اس پر بھی اعتراض ہے. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے خواتین و حضرات وہ یہ کہ کنسنسس کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ, گفتگو کے ساتھ قانون سازی یا معاملات پر عمل کرنے کے لیے کوئی طریقے کار متعین نہیں کیے جاتے. جو حکمراں جماعت ہوتی ہے بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں جو کروں اسی کو آپ مانو, اور جب وہی حکمراں جماعت اپوزیشن کے بینچ میں جا کر بیٹھتی ہے تو بڑی بڑی باتیں کرنے لگتی ہے, جیسے ہمارے ملک کا, ہمارے سیاسی نظام کا ایک رواج ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اصل آبادی کیا ہے؟ یہ آج کے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے, آپ سیدھے سادے طریقے سے جو شناختی کارڈ جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اس میں شناختی کارڈ میں دو ایڈریسز ہر ایک کے ہوتے ہیں, ایک مستقل پتہ, ایک عارضی پتہ. سوال ہے کہ عارضی پتہ کب تک؟ قانون کے مطابق عارضی پتہ کب تک؟ زیادہ سے زیادہ عارضی ایک سال, کم سے کم عارضی 6 مہینے کی. اب اگر ایک شخص ایک فیملی کے ساتھ شہر کراچی میں پچھلے 40 سال سے, 30 سال سے, چلے میں کم کرتا ہوں 10 سال سے, 5 سال سے آباد ہے, مردم شماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ہیں, آپ کے اہل خانہ کتنے ممبرز پر مشتمل ہیں, آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا دین مذہب کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے, ان ساری چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے مردم شماری میں. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ کوسچن کی صورت میں, کوئز کی صورت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو لوگ, جو پاکستانی لوگ پاک کراچی میں ایک زمانے سے ہیں, اور مردم شماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو شمار کیا جائے شہر میں کب سے کتنے لوگ کہاں کیسے رہتے ہیں. جو شخص شہر کی یوٹیلیٹیز کو یوز کرتا ہے, جو شخص شہر کے تمام احتیاجات کو, تمام ضرورتوں کو شہر سے, اپنی ضرورتوں کو اس شہر سے پورا کر رہا ہے, اس کا نام پرمننٹ پتہ میں کیوں درج ہو, اس کا اس مردم شماری سے کیا تعلق ہے یا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ اس شہر کی تمام فیسلٹیز کو انجوائے کر رہا ہے. پاکستان سے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز کراچی کے مردم شماری کا معاملہ ہمیشہ حساس نوعیت کا رہا ہے, سیاستدانوں کے نزدیک بھی, حکمرانوں کے نزدیک بھی, اور جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی. کچھ حلقے ہمیشہ کراچی کی مردم شماری کے عمل پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں, جس کے باعث مردم شماری میں بے قاعدگیاں پیدا ہوتی رہی ہیں. ماضی میں 2017 میں بھی ایسے ہی ہوا, بلکہ ایک المیہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ پولیو کا ٹیکہ لگانے جو عملے آپ کے شہر, آپ کے گاؤں, آپ کے گلی کوچے میں بےچارے جاتے ہیں, پچھلے مرتبہ سننے کو, دیکھنے کو ملا کہ ان کو گولی مار دیا. ہمارے ٹالرنس کا یہ حال ہے, چونکہ ان کو کہیں سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ حرام ہے, ان کو کہیں سے پتہ لگ گیا کہ یہ غلط ہے. اب غلط کا علمی ڈبیٹ سے غلط صحیح, غلط یا صحیح کو سیٹل علمی دلیل سے کیا جاتا ہے, لیکن یہ اس معاشرے میں جہاں علم اور عالم کی قدر ہو. ہمارے ریاست کا ایک عجیب نظام ہے, اگر کوئی علمی گفتگو یا علمی خیالات یا علمی پائے کا شخص ہے, عام طور پہ میجورٹی لوگ اس کو طنز کرنے لگتے ہیں, او علماء آیا, او دیکھو, یعنی اس کی قدر قیمت نہیں ہے. جیسے یورپ کے ممالک میں آپ کے پاس اگر علم ہے, آپ کے پاس عمل ہے, یورپ میں اس کی قدر کی جاتی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے مگر مسلمانوں والی عادات ان میں پائی جاتی ہیں. مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ مردم شماری سے یہ ایک مراد, یہ بھی ایک مراد ہے کہ ایک مخصوص مدت میں, ایک سرٹن ٹائم میں آبادی کو اس طرح گنا جائے یا اس طرح گنا جانا چاہیے کہ جو جہاں ہے وہ وہی کا رہائشی گنا جائے گا, تصور کیا جائے گا, سمجھا جائے گا. یہ ہے مردم شماری کا مقصد. یہ نہیں ہوتا کہ آپ رہتے ہیں شہر کراچی میں, آپ شہر کراچی کے تمام وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن مردم شماری میں آپ کا نام نہیں. آپ ووٹ بھی دے رہے ہیں, آپ شناختی کارڈ بھی آپ کا ہے, لیکن مردم شماری میں نام آپ کہیں اور کا دے رہے ہیں. یہ بات عجیب سی ہے, انوکھی ہے, نہ سمجھ میں آنے والی ہے. مردم شماری کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مردم شماری کے مقاصد کو بھی دیکھنا لازمی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رہائش پذیر شہر میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں, یعنی ٹیمپرریلی اور پرمننٹلی جو یہاں رہ رہے ہیں, मैं ये नहीं कहता 100 साल से 50 साल से आबाद हैं, लेकिन जो रह रहे हैं कम से कम 6 महीना साल भर से तो रह रहे हैं, तो यहां के वसाइल को यूज कर रहे हैं। तो मर्दमशुमारी का मतलब ही यही है कि आपके आपको शुमार करके फिर कुछ पैसे मुख्तस किए जाएंगे ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सके, आपके घरेलू अंदाजे रिहाइश को बेहतर किया जा सके, आपके आपके बच्चों की तालीम का ख्याल रखा जा सके, फी जमाना आपके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जा सके, आपकी यूटिलिटीज जो हैं जैसे बिजली पानी गैस पानी केएमसी के जो मसाइल हैं वो हल किया जा सके, और दीगर ऐसे ही छोटे छोटे मसाइल हैं। इसमें कराची को पिछली मरतबा 1,80,00,000 की आबादी दिखलाई गई थी, हद होती है इस हद तक कम करके दिखाना, या हद होती है उन लोगों का नाम को दर्ज ना करना जो शहर में तो रहते हैं मगर नाम शहर में नहीं डलवाना चाहते। तो भाई शहर का काम और शहर के वसाइल को भी मत इस्तेमाल कीजिए। शहर के जो माली वसाइल हैं, रिसोर्सेस हैं, उसकी तकसीम ये मर्दमशुमारी का एक बुनियादी मकसद है। अच्छा, इसका दूसरा जो मकसद है सियासी, लेकिन याद रखे रियासत को चलाने के लिए जमहूरियत, सियासत, कानून साजी और ऐसे ही तमाम ऐसे ओदे जो आवाम के जरिए आवाम की खिदमत के लिए क्रिएट किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए उनकी तादाद को कम या ज्यादा करने के लिए भी मर्दमशुमारी की जाती है। कौमी असेंबली का इलेक्शन हो यानी हल्का बंदी हो, सूबाई असेंबली की हल्का बंदी हो, बल्दियाती इलेक्शन के लिए कितने काउंसलर होंगे, कितने नायब अमीर होंगे, नायब वजीर होंगे, नायब मेयर होंगे और दीगर हल्का बंदियों, और मेयार जिंदगी की जांच पड़ताल जैसे दीगर अहम मामलात भी मर्दमशुमारी से जुड़े हुए नजर आते हैं। कराची में जो रिहाश पजीर लोग हैं उन लोगों की गिनती से पता चलता है कि एक मखसूस तारीख को पूरे पाकिस्तान में कितने खानदान और कितने अफराद आबाद हैं। एक मखसूस तारीख में, वैसे पहले 10-10 साल के लिए मर्दमशुमारी हुआ करते थे, बल्कि दुनिया में भी 10 साल के लिए मर्दमशुमारी होते हैं, लेकिन वहां का निजाम है। हम अगर घूमने भी यूरोप में जाते हैं कहीं तो हमको वहां भी इंदराज करवाना पड़ता है, कितने अरसे के लिए हम वहां रहते हैं जाएंगे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में अफगानी हैं, बंगाली हैं, सराइकी हैं, सिंध से आए हुए सिंधी भाई लोग हैं, बलोची हैं, तमाम जो कौमियतें हैं वो वहां रहती हैं, लेकिन मर्दमशुमारी में उनका नाम शहर में डलना चाहिए शहरी के हिसाब से, मगर नहीं डाला जाता। उसमें मैं कानूनी एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि उनके बड़ों ने उनको कुछ पट्टी पढ़ाई हुई है, अब वो पट्टी मालाफाइड इंटेंशन के तहत, बदनीयती के तहत होती है कि आपकी आबादी, आपके शहर की आबादी, एक मखसूस शहर की आबादी, आपका मेरा क्या है भाई, मेरा आपका तो कब्र के 2 गज जमीन है बस। तो हमारा जो शहर है जिसमें फिल वक्त हम रहते हैं, इस शहर में हम कितने अरसे से और कहाँ रहते हैं, मकसद ये है ताकि आपको आपकी जरूरतें आप तक पहुंचाई जा सके। खानदान के साथ रहते हैं या छड़े छाट रहते हैं, आम तौर पे आप देखिएगा जो कराची में लोग रहते हैं वो अगर अपने गांव जाते हैं, उसको वो कहते हैं मुल्क जा रहे हैं, तो अपने गांव अपने मुल्क जब जाते हैं वो, तो ज्यादा से ज्यादा महीना 15 दिन, 2 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे वकील भाई लोग हैं, वो जून जुलाई की छुट्टियों में जाते हैं, यानी साल में एक मर्तबा गए 2 महीने के लिए, दोबारा गए 15 दिन के लिए। उनका नाम कहाँ शामिल होना चाहिए, उनका नाम कहाँ काउंट होना चाहिए? यकीनन जहां ज्यादा अरसे रहते हैं। पाकिस्तान का कौमी फंड सूबों और इलाकों में कैसे तकसीम होगा, ये भी मर्दमशुमारी के मरहून मिन्नत है। अगर सही तरीके से मर्दमशुमारी की जाए तो यकीनन वो जो वसाइल हैं उसकी तकसीम, उसका इस्तेमाल इंसाफ से फिर किया जा सकेगा होगा। और इसका फैसला जो है पाकिस्तान की कौमी मालियाती कमीशन यानी NFC, ये NFC आबादी के बुनियाद पर करेगा। जहां आबादी ज्यादा होगी तो वसाइल भी उसका हिस्सा उसको उतना ही वहां पहुंचाया जाएगा। जहां आबादी कम होगी वहां NFC रिवॉर्ड के तहत उनको वहां हिस्सा उसी हिसाब से दिया जाएगा। फिर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और बल्दियाती तीनों में किस इलाके को कितनी नुमाइंदगी मिलेगी, इसका फैसला आबादी की बुनियाद पर किया जाता है। यकीनन जब मर्दमशुमारी हो रही है तो आबादी का भी हो जाएगा। एक और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक, चूंकि हम हमारी नीयत भी सही नहीं है, चूंकि अमल सही नहीं है तो हम नीयत के मुतालिक गुफ्तगू तो कर सकते हैं ना। सिंपल सा भाई, शिनाख्ती कार्ड देख करके आप मर्दमशुमारी करो। सिंपल सा आपके पास, हमारे पास, सबके पास शहर का, अगर ज्यादा आबादी होगी तो ज्यादा हल्के बनेंगे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और काउंसलर्स के, और अगर कम आबादी होगी तो कम बनेंगे यकीनन। और इसी के मुताबिक असेंबली में हम 3 हिस्सों में लेकर के आते हैं जेंटलमैन, यानी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और बल्दियाती असेंबली। शिनाख्ती कार्ड को देख करके आसानी के साथ किया जा सकता है, मगर अल्लाह जाने क्यों, मैं बहुत मासूमियत से कह रहा हूं अल्लाह जाने, वैसे हमें आपको सबको पता है कि असल में इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट ताकत और पैसा है। यानी हो, मर्दमशुमारी इसलिए भी बहुत अहम तसव्वुर की जाती है हमारे समाज में, क्योंकि समाजी और माशी मंसूबा बंदी इसी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर की जाती है। और हर किस्म की मादी सहूलियात, जैसे स्कूल्स, जैसे हस्पताल, भाई स्कूल भी आपको खोल के, गवर्नमेंट की स्कूल ओपन करने की, इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। प्राइवेटली भले से आप जितना चाहे बना लें, ठीक है वो पैसा फेंक तालीम हासिल कर, लेकिन सरकार स्कूल बनाती है, ये भी मर्दमशुमारी के मुताबिक। सरकार हॉस्पिटल्स बनाती है, ये भी मर्दमशुमारी के हिसाब से, कि जहां जितनी आबादी होगी उसी हिसाब से हम वहां हॉस्पिटल बनाएंगे। पाकिस्तान कराची में एक जिना हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है, उसके बाद MQM के वक्त में एक नाजमाबाद में एक और हॉस्पिटल बनाया गया, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बनाया गया। ये दरअसल ये गवर्नर हुआ करते थे अब्बासी साहब ज़ियाउलहक के दौर में, तो ये उनके नाम से, उनके मरहून मिन्नत, उनके टाइटल के साथ ये हॉस्पिटल बनाया गया। एक कतर हॉस्पिटल ऑरेंजटाउन में है, जो कि जहां मुकम्मल इलाज नहीं है, बाकिया तो नेशनल हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन मेरा यहाँ निशानदेही में जो कर रहा हूँ वो सरकारी, जिसको सरकार फंड करते, यानी फंडेड बाय गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सम प्लेसेस फेडरल गवर्नमेंट भी करती है। शहर की आबादी को कम दिखाए जाने का मतलब ये है ख्वातीन हजरात के कम वसाइल पर गुजारा आप शहरी को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वसाइल देंगे तो आप तो वोट नहीं देंगे, जब आप हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको सहूलतें क्यों दें। ये खुदगर्जाना सोच हमारे हलकों में पाई जाती है। आप कहीं पे भी देखें, बहुत कहानी है, मगर चूंकि हमारा टॉपिक सेंसस है, हमारा टॉपिक मर्दुमशुमारी है, उस कहानी पे हम नहीं जाते। मर्दुमशुमारी की बदौलत मंसूबा साज इदारों को आबादी और उसके हकीकी मसाइल प्रॉब्लम्स के बारे में एदाद व शुमार फिगर आउट करने में आसानी होती है। मर्दुमशुमारी के नताइज की दुरुस्तगी का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। साथ साथ एक और बात जेंटलमैन मैं करता चलूं, इंडिया में ये सातवीं माशी, ये सातवीं माशी मर्दुमशुमारी है। पाकिस्तान में ये पहली मर्दुमशुमारी है। हम हर मामले में दुनिया का मिसाल देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली तरक्की के मामले में हम दुनिया का मिसाल नहीं देते। इवन पड़ोसी मुल्क इंडिया, पड़ोसी मुल्क ईरान, पड़ोसी मुल्क तुर्की का नहीं देते। हम तुर्की के तैयब अर्दोगान का तो मिसाल देते हैं, लेकिन उसके काम का मिसाल नहीं देते। हम तुर्की के अवाम का तो मिसाल देते हैं कि उन्होंने कू को, आर्मी ऑपरेशन को रोक दिया अवाम ने, मगर अवाम एक भीड़ के बजाय एक कौम कैसे बनती है इसका मिसाल नहीं देते। तो हम मीठा मीठा मुंह के अंदर डालते हैं, कड़वा कड़वा मुंह से बाहर फेंकते हैं। यह हमारा कौमी मिजाज भी है जो हमें तरक्की नहीं करने देती। सर्वे के तरीकों का मेयार और हिस्सा लेने की जो ख्वाहिशमंद लोग होते हैं, कराची एक बड़ा और मसाइलों से भरा हुआ शहर है। अपने हजम के एतबार से, यानी अपने रकबे के एतबार से, अपनी आबादी के एतबार से, ये तेजी से इसमें, इस हजम में, इस दायरे में, कराची में तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है। मगर मर्दुमशुमारी की तरफ अगर हम उनकी काउंटिंग देखें, वहां हम आबादी को बढ़ती हुई नहीं देख पा रहे हैं। जबकि आप देखें अब कराची, आप, हम कराची के हैं मगर पूरा कराची हमें नहीं मालूम। आप चलें केमारी से और तेसर टाउन तक चले जाएं, आगे भी आप देखें हैदराबाद के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं, और इस तरफ दूसरी तरफ हम छठा के करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट छठा तक पहुंच चुके हैं। खोखरा पार के अंदर जाए तो आप कहां तक चले जाएंगे अंदाजा ही नहीं है। पहले हम मलीर कैंट जाया करते थे साइकिल पर, चूंकि रिहाइश हमारी मलीर में थी, अब हम मोटरसाइकिल पर भी पूरे खोखरा पार को नहीं सर्वे कर पाते। यानी इस कदर अननेचुरल वे में आबादी बढ़ती जा रही है। कच्ची आबादी हमारी 65% हो चुकी है। मर्दुमशुमारी में आज भी वही शुमार किए जा रहे हैं जो कल थे। दिस इज नॉट फेयर। बहरहाल तेजी से आबादी में इजाफे और गैर रस्मी कच्ची बस्तियों की, यानी कच्ची आबादी जो है बस्तियों की वजह से, दुरुस्त मर्दुमशुमारी के लिए, मर्दुमशुमारी के जो अमले हैं उनको भी बहुत चैलेंजेस का सामना है। जैसे आप अगर मर्दुमशुमारी के लिए औरंगी टोन के एक बनारस एरिया है, वहां आप जाएंगे आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लानी में बेशुमार ऐसी जगह है जहां बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मर्दुमशुमारी का डाटा जो होता है वो आबादी का स्नैप शॉट जो शॉट लेते हैं हम स्नैप शॉट फराहम करता है, लेकिन नकल मकानी कुदरती जो नमू जो वहां पैदा हुए हैं और नकल मकानी जो माइग्रेटेड लोग हुए हैं शहरी तरक्की की वजह से वक्त के साथ साथ असल आबादी में तेजी से तब्दीली आ रही है। 2017 और अभी में डबल से भी ज्यादा आबादी बढ़ गई है। पाकिस्तान में रिवायती तौर पर मर्दुम शुमारी 10 साल बाद करवाई जाती थी, लेकिन अब 2011 का एक कानून बना, उसके तहत अब जब चाहे पिया तभी सुहागन, यानी सरकार जब चाहेगी मर्दुम शुमारी करवाएगी। ये एक अच्छी बात भी है मगर ये बुरी बात है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई तौर तरीका कायदा कानून उसूल जाब्ता नहीं है, लिहाजा इसके लिए मुख्तस होना चाहिए टाइम। 3 साल के बाद कर लें आप, मगर पता हो कि 3 साल के बाद, फर्ज किया हम घूमने गए हैं कहीं और मुल्क से बाहर, तो अगर हमें मालूम होगा फला दिन मर्दुम शुमारी है उस दिन हम अपने घर पे होंगे, लेकिन अचानक अगर आप करेंगे तो हम घर पे तो नहीं हो पाएंगे। लोग काम के लिए कारोबार के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे, तो उनका नाम कहाँ जाएगा, ये भी गौर तलब है। सबसे पहले मर्दुम शुमारी, आखिरी बात करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं, पाकिस्तान में सबसे पहले मर्दुम शुमारी 1951 में हुई और उसके बाद जो मर्दुम शुमारी हुई 1961 में, सबसे पहले लियाकत अली खान मरहूम के दौर में हुई, उसके बाद फील्ड मार्शल अयूब खान के मार्शल ला के दौर में हुई 1961 में हुई, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से 1 साल पहले, दूसरी पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान में बनाई गई थी 1956 में, दूसरी जो आइन साजी हुई थी 1962 में अयूब खान ने बनाया था, उससे 1 साल पहले मर्दुम शुमारी पाकिस्तान में की गई, उसमें भी बड़े बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। तीसरी मर्दुम शुमारी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी 1972 में, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, चूंकि उस वक्त हाथ से लिखा जाता था। उसके बाद फिर 1981 में मर्दुम शुमारी हुई जियाउल हक के दौर में, फिर जो है जियाउल हक के बाद जियाउल हक के एक चहीते हुआ करते थे, उनका नाम था नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में 1998 में मर्दुम शुमारी हुई, वो भी बहुत डिस्प्यूटेड था। उसके बाद जो मर्दुम शुमारी छठी मर्दुम शुमारी हुई थी 2017 में, सातवीं मर्दुम शुमारी जो है अभी जारी है। मर्दुम शुमारी में आप अपने आप को जरूर हिस्सा लीजिए, चूंकि आप किसी और को नहीं तब्दील कर सकते, कोई आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपना नाम तो कोशिश कीजिए उनका वेबसाइट को देख करके उसी में आप अपने नाम को इंदराज करवाइए, अपना और अपनी मर्दुम शुमारी के हकूक का ख्याल रखिए, ये आपका बुनियादी हक है, इसी से आपको दूसरे हकूक जुड़े हुए हैं, इसी से आपको हकूक मिलेंगे, चूंकि दूसरे तमाम हकूक मर्दुम शुमारी से जुड़े हुए हैं। असलम परवेज को नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त दीजिए, दूसरे एपिसोड किस्त के साथ हम आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अगर आप कोई नया है, नया व्यूवर्स है, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको बर वक्त मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपने हुकूक आपके हुकूक पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।